Om Shanti. You have already met Didi Nalini yesterday. She read Murali for all of us. And there was a request for her to share her experience today. How to experience Baba's love through Drishti. No, in fact, how to take Drishti from Baba. Baba se kaise Drishti lena hai aur Drishti se pyar ka anubhav kaise karna hai. No, Nalini Didi has a wealth of experience of being with Baba in Sakar for several years and received sustenance from Mama, Didis and all the seniors. And Nalini Didi appears on various televisions, Hindi speaking, brothers and sisters, they must have seen her every morning reading Murali Essence. How many of you watch her on TV? Didi? Aapko dekhte hai TV mein. Raise your hand. How many of you watch her on TV? Okay. So, now the one whom you see on the screen is in life. So it's our fortune that when we come to Madhuban, you know, we can meet many, many yogis and yoginis who have done tapasya for so many years. And as it is our first day of this season to celebrate a meeting with Bab Dada, it is good for us to understand clearly how to take drishti. You know, people are confused whether to look at the forehead, whether to look into the eyes, whether to look at the face, what to do. So how to take drishti and how to experience love Baba gives through his drishti. So she will share on the basis of her experience, because she was the one who was taken beyond with a glance, with Baba's drishti. And so it will be interesting to understand. Didi, theek hai? Baba se drishti kaise lena hai? Kaiyon ko prashn hota hai na? Kahan dekhna hai? Yahan dekhna hai? Yahan dekhna hai? Yahan dekhna hai? Kahan dekhna hai? Aur kaise Baba jo pyar deta hai, vardaan deta hai, drishti se hum kaise le? So aaj, no, Didi will prepare all of us in such a way we can take maximum benefit from Baba's presence. Enjoy Didi's company. Give a big hand.
Om Shanti. Om Shanti. सभी फ्रेश बैठे हो ना, क्योंकि अमृत वेले से लेकर के उठे हैं, बाप दादा से भी रूरिहान की, योग किया, मुरली सुनी और उसके पश्चात कर्म योगी बन करके, और आज तो विशेष बाप दादा के मंगल मिलन का दिन है, इसीलिए अंदर में खूब उत्साह है, उमंग है और इंतजार है. इंतजार में घड़ियां गिनी जाती हैं. मिलने का जो टाइम होता है ना, तो वो टाइम के समीप जाने की अंदर में बहुत जल्दी होती है. तो जब से समय मिलता है, उससे भी पहले जब हमें अपने स्नेही का मिलने का समय लेना होता है, फिर निश्चित करना होता है, फिर निश्चित करने के बाद फिर वो घड़ी उसका हमें इंतजार हो जाता है. तो तब से लेकर के बीच का समय जो इंतजार कहलाता है, तो इंतजार कहते हैं, जितना ज्यादा इंतजार करते हैं उतना मिलन जो होता है वो बड़ा गहरा और बड़ा मधुर होता है. तो इंतजार की घड़ियां बड़ी प्यारी होती हैं, परंतु उस इंतजार की घड़ियों में अंदर में आत्मा धीरे 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 उड़ती चली जाती है अपने स्नेही की ओर, और जब बराबर वो घड़ी आकर पहुंचती है, स्नेही को सामने पाते हैं, तो हमारा उड़ना वहां स्टॉप हो जाता है, क्योंकि जिसे पाना था वो हमारे सामने होते हैं। तो दृष्टि का बड़ा महत्व है। बाबा भी कहते हैं वृत्ति से दृष्टि बनती है, फिर दृष्टि से सृष्टि बनती है। और कैसे दृष्टि से सृष्टि बनती है वह भी बाबा ने हमें समझा दिया है, और इसीलिए दृष्टि को शुद्ध और पावन बनाने के लिए और विशेष परमपिता परमात्मा जब साकार तन में आते हैं तो उनसे मंगल मिलन मनाने के लिए हमारी दृष्टि जो है वो कैसी होनी चाहिए, उसके लिए बाबा हमें तैयार करते हैं, उसके लिए पवित्र बनाते, एकाग्रता वाला राजयोग सिखाते, दैवी गुणों की धारणा भी कराते, और फिर सर्विसेबल शुभ भावना शुभ कामना की मनसा भी रखना हम बच्चों को सिखलाते। तो दृष्टि जो होती है, तो दृष्टि यह किसी भी व्यक्ति के स्नेह को या उस स्नेही को दिल में प्रवेश कराने का और करने का द्वार है। ये दो खिड़कियां हैं, जिन दो खिड़कियों से जैसे दो दरवाजे होते हैं, ऐसे ये दो दरवाजे हैं। हम जिसको देखते हैं, जिससे हमारा स्नेह है, या फिर सामने वाली स्नेही व्यक्ति यदि मेरे दिल तक पहुंचना चाहती है तो किसका सहारा लेना पड़ता है? दृष्टि का ही सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि दृष्टि जो होती है वो आत्मा की मन की भाषा बोलती है। सबसे नजदीक भ्रुकुटी के बीच आत्मा है, परंतु सबसे आत्मा के समीप कौन है? एक है इस स्थूल शरीर में दृष्टि। और यही कारण है कि जो भी हम बच्चों के मन के अंदर भाव उठते हैं प्रभु के प्रति या किसी भी व्यक्ति के प्रति, जो भी स्नेह की भावनाएं उठती हैं, जो भी सकारात्मक, चाहे खुशी की, चाहे प्रेम की, चाहे किसको राजी करने की, या किसको देख करके खुशी हमें हुई ये दिखाने की, तो मन की स्थिति, आत्मा की स्थिति, दिल की स्थिति को दिखाने का यह एक दर्पण भी बन जाती है। तभी बाबा के लिए तो खास यही कहते हैं, और प्रैक्टिकल में अनुभव भी किया है कि बाबा की दृष्टि में जादू है। तो जादूगर की जादूगरी हम कैसे अनुभव करें? अब मंगल मिलन मनाने तो आए हैं, परंतु बाप दादा तो हमसे थोड़े दूर होते हैं। जो जितना सीट पकड़ के जहां बैठते हैं तो अंतर तो होता ही है, तो बाप दादा अपने स्थान पर अपने तख्त पर बैठे हुए होते हैं, और हम सभी अपने देह रूपी भ्रुकुटी के तख्त पर बैठे हुए होते हैं। अब हमें दूर से ही बाबा से मंगल मिलन मनाना है, और जरिया क्या है? दृष्टि। हम बाबा को स्थूल में हग नहीं करते, लेकिन हम बाबा से दृष्टि के द्वारा ही मधुर मंगल मिलन मनाते हैं। तो दृष्टि से हम बाबा के जो मन के भाव हैं, बाबा के आत्मा के जो भाव हैं, भावनाएं हैं, हम बच्चों के प्रति बाप की जो चाहनाएं हैं, मुख से तो बाद में निकलती है, पहले बाबा की दृष्टि में वह बात आती है और वह बाबा हमें अपने तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, यानी बच्चों तक फिर बाबा उन्हें शब्दों के द्वारा पहुंचाते हैं। इस शरीर के अंदर जैसे आत्मा ब्रुकुटी के बीच है, तो वो पूरे शरीर की सर्व कर्मेंद्रियों को रोशन करती है। रोशन करती है माना उन्हें चैतन्य रखती है। अगर वो ना होवे तो हमारी चैतन्यता नष्ट हो जावे और हम एक मृत शरीर कहलाते। परंतु आत्मा के कारण ये सबसे बड़ा हमारा आत्मा है, ये प्रूफ है कि आत्मा इस देह में है। तो रोशनी के कारण अर्थात वो शक्ति ऊर्जा चैतन्यता, उसके कारण हमारा शरीर और शरीर की सर्व कर्मेंद्रियां चैतन्य है। ये तो आप सभी भी अच्छी तरह से जानते हैं। परंतु मुझ आत्मा को प्रभु के लिए क्या क्या भाव उत्पन्न होते हैं, क्या क्या फीलिंग्स मेरे दिल के अंदर उछल रही है मेरे बाबा के लिए, तो वो मैं कैसे दिखाऊं? यदि कोई लिखने के शौकीन होते हैं तो वो क्या करेंगे? पत्र पर बैठ करके लिखेंगे। जो गीत गाकर बनाने के शौकीन होंगे वो गीत गाकर के व्यक्त करेंगे, कोई गीत बना करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे, कोई फिर मुख का सहारा लेकर के आपस में वर्णन करके और फिर अपने भावों को प्रकट करेंगे। परंतु ये तो अलौकिक दिव्य मिलन होगा, अलौकिक पारलौकिक आत्मा का अपने रूहानी बाप परमपिता परमात्मा से। तो बाबा ने हमें उसके लिए जैसे इस स्थूल देह में नेत्र दिया ताकि हम व्यक्तियों को देखते हैं और फिर व्यक्तियों के लिए जो भी हमारी फीलिंग्स है या उनकी फीलिंग्स है उनको हम कैच करते हैं। कैच भी कैसे करते हैं? चेहरा देखकर ही तो कैच करते हैं, चेहरे पर ही पता चलता है कि इसको मुझे देख करके बहुत खुशी होती है, उसकी आंखें चमक उठेंगी, उसका चेहरा चमक उठेगा, जैसे ही देखेंगे ओह हाय, हम तुरंत ऐसे उद्गार निकालते हैं, दिल से निकलता है, तो हम एकदम खुशी में जैसे कि बोल उठते हैं। अगर नहीं भी बोले तो हमारा चेहरा बोलता है। अब चेहरे को कोई मुख तो है नहीं, फिर भी हम कहते हैं उसके चेहरे से मालूम पड़ा, उसके चेहरे ने बताया, उसके चेहरे ने कहा। अब चेहरे में भी सबसे ज्यादा कौन बताता है? आंखें बताती हैं। आंखों के अंदर देखते हैं ना, तभी पता चलता है कि ये आंखें क्या कह रही हैं। इसीलिए जब भी कोई स्नेही मिलते हैं और पहली नजर में ही यदि दोनों एक दो को अपना बना लेते हैं, सेकंड की बात होती है, सेकंड से भी बहुत कम समय, दृष्टि क्या मिली और यदि उन्होंने दोनों ने एक दो को देख करके कोई डीप ऐसी स्नेह की भावना उनके अंदर प्रकट हुई तो तुरंत वो एक दो को अपना बना के बैठते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रेम हुआ, लव हुआ। तो हम बच्चों का भी अभी लव किससे हुआ? बाबा से हुआ। अभी कईयों का लव, बाबा का परिचय सुना, बाबा में निश्चय बैठे, उसके बाद लव होता है। अब हमारा दृष्टि से बाबा से लव करने का आज हमें बहुत बड़ा मौका है। हम कैसे बाबा की दृष्टि से इस लव की फीलिंग्स हम कैसे अनुभव करेंगे? तो बाबा ने विधि बताई है। कई बार हमारे भ्राता जी सूरज भाई भी इस विषय में बताते रहते हैं, लेकिन हमें अपनी पर्सनली एक ऐसी स्थिति बनानी है जहां न ज्ञान हो न विज्ञान हो, यदि हो तो हम दो के बीच में सिर्फ प्रेम की डोर हो, वहां भी प्रेम हो यहां भी प्रेम हो। तो बाबा के पास तो प्रेम है ही है, क्योंकि बाबा तो है प्यार के सागर। अब हमें अपनी डोर जहां भी बैठे हैं वहां से बाबा के साथ ऐसी बांधनी है जो हमारी डोर से बाबा हमें जब भी दृष्टि ऐसी घुमाए तो उस डोर से खींचे हुए हम बाबा के समीप पहुंचे हैं, यह हमें अनुभव हो। जैसे सूर्य एक ही स्थान पर चमकता है, एक ही स्थान से वो सभी को किरणें देता है, तो मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा भी अपने ही स्थान पर होते हैं। अपने स्थान पर अर्थात गुलजार दादी के तन में होंगे, लेकिन जब दृष्टि देंगे वो चमकेंगे, ज्ञान सूर्य चमकेगा तो उसकी किरणें क्या होंगी? सब तरफ पड़ेंगी। ऐसे तो नहीं कि ये कोने में पड़ी, उधर दूर नहीं पड़ी, इधर पड़ी उधर नहीं पड़ी। हाँ, सूर्य की किरणों का सभी को अनुभव है, हर एक को सूर्य की किरणों का अनुभव आता है। उसके साथ साथ अभी हम सभी अंधकार में बैठे हैं या रोशनी में बैठे हैं? हाँ, रात्रि में बैठे हैं या दिन में बैठे हैं? नेचुरली हम कहेंगे हम दिन में बैठे हैं, रोशनी में बैठे हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा जब आते हैं तो प्रकृति अंधकार वाली होती है, क्योंकि समय रात्रि का हो जाता है तो बाहर अंधकार हो जाता है, लेकिन हम ब्राह्मणों के पास क्या होता है? उजाला होता है, क्योंकि स्वयं उजाला करने वाला हमारे सामने विराजमान होता है। अब बाबा तो जागती ज्योत है, इसीलिए वो ज्योत जगती है। जैसे शरीर में आत्मा की ज्योत जगी तो पूरी कर्मेंद्रियां चैतन्य और एकदम स्फूर्ति में आ जाती है, एक्टिव हो जाती है। ऐसे बाबा की प्रवेशता जैसे ही होती है और बाबा के नेत्र गुलजार दादी के द्वारा खुलते और बाबा दृष्टि देना शुरू करते, हम तो वैसे भी इंतजार में बैठे हुए होते हैं कि भाई अभी गुलजार दादी गई कि गई ट्रांस में। जैसे ही गुलजार दादी ट्रांस में जाती है तो वो घड़ी पूरी होती है हमारी इंतजार की। फिर इंतजार होता है कि अब बाप दादा आए की आए। तो हमारे मन की स्थिति का नेत्रों के साथ एकदम संबंध जुट जाता है, दोनों एकता में आ जाते हैं। ऐसे नहीं सोचते कुछ और हैं, देखते कहीं और हैं, या देखते कुछ और हैं और सोचते कुछ और हैं। नहीं, हम सभी की एक यूनिटी हो जाती है और वो यूनिटी हमारी मन की लगन की भी यूनिटी, बुद्धि की एकाग्रता की भी यूनिटी और फिर वृत्ति की भी यूनिटी। तो हम हर एक ऐसी एक यूनिटी में आ जाते हैं, आंतरिक रीति से भी यूनिटी में और फिर नेत्रों से भी हम सभी यूनिटी में आ जाते हैं, क्योंकि हम सभी का अंदर का और बाहर का ध्यान कहाँ होता है, एक बाप दादा की ओर। और फिर जब उनकी दृष्टि मिलती है तो हमारी ये जो अंदर की और बाहर की यूनिटी वो हमारी स्थिति बनाती है। कौन सी स्थिति बनाती है? एकाग्रता की। और एकाग्रता के साथ साथ मैं आत्मा हूं हम बोलते नहीं हैं, स्मृति भी नहीं दिलाते हैं, लेकिन मैं हूं इस अनुभव में प्रैक्टिकल हम होते हैं। हमें कोई कहता भी नहीं है आजू बाजू वाला कि तुम आत्मा हो, अब आत्मा हो के बैठो फिर बाबा को दृष्टि दो। ऐसे हमें छोटे बच्चों की तरह सिर्फ बोलना नहीं होता है, मन में भी यदि बोलें तो ये हुआ स्वयं को स्मृति दिलाना। स्मृति वो दिलाएगा जो उस समय विस्मृत होगा, जो भूला हुआ होगा, भूल के बैठा होगा, यानी वो यहां नहीं होगा, वो कहीं और होगा। हॉल में बैठे होते हुए भी देह में आत्मा विराजमान होते हुए भी वो कहां होगी? कहीं और होगी। इसीलिए दृष्टि हमारी वो वाहन बनती है जो बाबा के समीप हमको ले आती है। मन की वृत्ति से वो वाइब्रेशंस निकलता है और हम वो वाइब्रेशन अपनी देही अभिमानी स्थिति के द्वारा, अगर देही अभिमानी स्थिति नहीं तो हम अपनी डोर, हम जो एक जैसी एक रस प्रभु की तरफ बांधे रखना चाहते हैं वो बंधी हुई नहीं होती है, प्रभु तक वो हमारी डोर पहुंचती नहीं है। अगर हमारी मन की स्थिति में हलचल है, कोई प्रश्न है या कोई संशय है तो हमारी डोर प्रभु तक बंधेगी नहीं, पहुंचेगी नहीं। और प्रभु की दृष्टि वो तो हमारी तरफ आएगी, क्योंकि वो तो सूर्य है, उसकी किरणें सबको मिलती है। लेकिन मैंने अपने दिव्य नेत्र का दरवाजा बंद किए हुए है, जैसे हम ये नेत्र खोल करके बैठे हैं तो हमको पता चलता है कि बाप दादा की पधरामणी हुई, तो बाप दादा ने हमें दिव्य नेत्र भी दिया है, तो दिव्य नेत्र भी हमें क्या करना पड़े? खुला रखना पड़े। दिव्य नेत्र हमारा बंद नहीं होना चाहिए। दिव्य नेत्र कैसे बंद होता है? या तो कोई ना कोई प्रश्न, या कोई ना कोई संशय, या तो कोई ना कोई व्यर्थ संकल्प, या फिर हम कहीं यहां से हम एब्सेंट होकर के कहीं और चले जाते हैं, तो अंदर का दिव्य नेत्र बंद हो जाता है। जब दिव्य नेत्र बंद हो गया तो जिस नेत्र से हम बाबा की दृष्टि का अनुभव करेंगे, स्थूल नेत्र और दिव्य नेत्र, अब उनकी भी यूनिटी बनानी जरूरी है। तो वो हम तभी कर पाएंगे जब हम मन और बुद्धि से अपने को, मन को लगन में रखेंगे, प्रभु की लगन में, और बुद्धि को एकाग्र चित्त करेंगे आत्मिक स्थिति के द्वारा। और फिर हम यदि दिव्य नेत्र खुला रख करके, अर्थात बराबर मन और बुद्धि, कोई हलचल नहीं, नहीं तो क्या होता है, जो पहली बार आए हैं, नए नए हैं या कई पुराने भी हैं, उनको अंदर में कंफ्यूजन भी होता है। कंफ्यूजन ऐसे होता है कि हम बाबा तो आएंगे, लेकिन हम बाबा को कहाँ देखें, बाबा को यहाँ देखें या बाबा के नैनों में देखें या बाबा के चेहरे पर देखें, हम बाबा को कहाँ देखें। तो जब किसी को देखना होता है तो हम क्या करते हैं, हम पूरे चेहरे को ही देखते हैं, ऐसे नहीं कि हम सिर्फ आंखें देखते हैं, नहीं। प्रभु की ये करामत है कि हम सिर्फ आंखों को भी देखेंगे ना तो भी पूरा चेहरा दिखाई पड़ेगा, पूरा चेहरा देखेंगे तो आंखें भी दिखाई पड़ेंगी, नाक भी दिखाई पड़ेगा, मुख भी दिखाई पड़ेगा। और पूरा चेहरा देखने से इन सभी के अपनी भंगिमाएं क्या है, यानी ये चेहरे पर कौन सी रेखाएं इमर्ज होती हैं, ये तभी पता चलता है जब हम किसी को देखते हैं। तो पूरा चेहरा देखना होता है, परंतु चेहरे में भी हम कहां देखें। तो भाई मेडिटेशन करते हैं तब तो हम बिल्कुल एक बिंदु देखते हैं, अपने को भी एक बिंदु समझते, और जो शिव बाबा का भी बिंदु है हम उसको देख करके मेडिटेशन करते हैं। परंतु यहाँ हमें बाबा को, माना साकार बाबा और निराकार, अव्यक्त बाप दादा और निराकार बाबा, हमको तो इन दोनों को देखने का है। तो दोनों को देखने के लिए हमें अपना आत्मिक स्थिति का दिव्य नेत्र खुला रखना है और बाबा को देखना है और बाबा के नेत्रों को देखना है। आत्मा तो है ही उनके पास में, बिल्कुल वो तो है ही तख्त पर विराजमान। तो दृष्टि का बड़ा सुख होता है, दृष्टि से ही स्नेही जन एक दो को अपने स्नेह का इजहार करते हैं, दृष्टि से ही पता चलता है कि ये व्यक्ति मुझे चाहता है, ये व्यक्ति कुछ मुझे विशेष रूप से चाहना से देख रही है। तो बाबा हमें विशेष चाहते हैं, तो बाबा भी हम संगम युगी, हाँ शिववंशी, फिर प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली, हम जो कल्याणकारी संगम युगी ब्राह्मण हैं, बाबा भी हम ब्राह्मण बच्चों को देखता है। तो बाबा हमें देखता, हम बाबा को देखते। अब बात आती है कि हम उस समय क्या सोचें। एक्चुअली तो हमारा जो अनुभव है, जो हमने साकार बाप में अनुभव किया, हम बाबा से मिलने के लिए, साकार बाबा की बात बता रही हूँ, हम साकार बाबा से मिलने के लिए जब उनके कमरे में जाते थे, हमारे समय पर तो हम ऐसा कुछ भी नहीं सोचते थे कि बाबा को यहाँ देखें, कि नैनों में देखें, कि बाबा हमको प्यार करता है नहीं करता है। हम तो इतना जानते कि बस हमको बाबा मिला, हम बाबा के बन गए, अब बाबा हमारा है और हम बाबा के हैं। तो इसीलिए अंदर में एक निश्चय, और उसी निश्चय से जब भी बाबा से मिले, बातें की, हम उसी रीति से इजीली, जैसे लौकिक में बच्चे अपने माता पिता से मिलते हैं, हम बिल्कुल ऐसे इजी बाबा से मिलने जाते थे, उठते थे, बैठते थे, बातें करते थे। तो जब हम बाबा के पास मधुबन में आते थे, तो जब मुंबई से निकलते थे तो अंदर में बहुत कुछ सोच के आते थे वहां से, क्योंकि वहां हमारा दिव्य नेत्र और ये नेत्र ये सब बातों को नहीं सोचता था। लेकिन हम ये सोचते थे हम बाबा के पास जाएंगे, फिर बाबा से ये बात करेंगे, बाबा से वो बात करेंगे, बाबा को ये पूछेंगे, बाबा को वो पूछेंगे, बाबा फिर क्या कहेगा, बाबा क्या जवाब देगा, ऐसे हम अपनी कल्पना के जगत में विहार करते थे। और उसी में भी आनंद आता था क्योंकि बाबा बाबा ही होता था जगत, उस मनो जगत के अंदर भी हम बाबा से ही बातें कर रहे हैं। फिर बाबा के पास जब कमरे में आते थे, ओह क्या बताऊं आपको, हम कमरे के जैसे जैसे, वैसे तो आबू रोड से ही वाइब्रेशंस धीरे 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 परसेंटेज में इतने बढ़ते जाते थे, फिर जब बाबा के पास कमरे में आकर के मिलना होता था, तो ये जो अनेक प्रकार की बातें जो सोच करके आए, बाबा को जहां देखा, जैसे ही दृष्टि ने बाप दादा को देखा, हम जो भी सोच के आए थे सब भूल जाता था। कुछ भी याद नहीं आता था, बस बाबा को देखते रहे और कुछ नहीं सूझता था, बस बाबा क्या बोलते हैं वो सुनना और बाबा को देखना। और इतनी खुशी, इतनी खुशी, हम उस खुशी को व्यक्त करने के भी काबिल नहीं रहते थे, वो भी क्षमता हमारे में नहीं रहती थी, इतनी खुशी अंदर में भर जाती थी। फिर जैसे ही बाबा के कमरे से बाहर निकल के वर्णन करते थे जब एक दो के पास, तब याद आता था, अरे वहां से तो ये सोच के आए थे कि बाबा को ये पूछेंगे, पूछा ही नहीं, याद ही नहीं आया। तो ये किस बात की कमाल थी, साकार बाप की स्थिति की कमाल, उनकी जो देही अभिमानी स्थिति थी, उस देही अभिमानी स्थिति ने क्या किया, हमें भी विदेही बना दिया। हम उनके कमरे में क्या आए, हम जैसे खुद भी फरिश्ते बन करके आए, तब तो हम ये फरिश्ता वगैरह भाषा नहीं बोलते थे, आज समझ में आ रहा है कि हम भी बिल्कुल शांत हो जाते थे, अपने स्वधर्म में स्थित हो जाते थे ऑटोमेटिकली, और शांति से चुपचाप बाबा के कमरे में बाबा के सामने आकर के बैठ जाते थे। और फिर बाबा से दृष्टि मिलती थी, जब दृष्टि लेते थे बाबा से तो गुम हो जाते थे, ऐसे लगता था कि हम सागर के अंदर जैसे जंप मार दी और फिर हम तैर रहे हैं, तैर रहे हैं, तैर रहे हैं, बस तैरने का आनंद ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। जैसे शिव बाबा ने जब प्रवेश किया, तो बाबा ने जब तीन महावाक्य उच्चारण किए प्रथम, तो बाबा ने उसमें एक महावाक्य यह भी बताया कि आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। आप देखेंगे जितनी भी सकारात्मक भावनाएं हैं ना, उन सकारात्मक भावनाओं का हमें आनंद चाहिए, शांति का भी आनंद होता है। भैया कितनी शांति है, माना क्या कितनी शांति, माना क्या, तो वो आनंद की स्थिति है। अंदर में आत्मा आनंद का अनुभव करती है। सुख मिलता है तो आनंद होता है, किसी को मिलते हैं आनंद होता है। तो जैसे बाबा आनंद स्वरूपम शिवोहम है, ऐसे मैं आत्मा भी मास्टर आनंद स्वरूप हूं। तो जब दृष्टि लें तो एक तो अंदर में हमारा जितना भी प्यार है, अगर हमने सही अर्थ में आत्मा को महसूस किया है, परमपिता परमात्मा को निश्चय के साथ महसूस किया है कि ना यही हमारा बाबा है, यही मेरा रूहानी बाबा है, और कल्प के बाद हम बाबा से मिल रहे हैं, तो स्थिति बनानी नहीं पड़ती है। पर चलो नहीं बनी हुई है तो हम अपने को स्मृति दिलाएं। हाँ, बाबा कहते अपने को स्मृति दिलाओ। बाबा कहते सोचो, क्या सोचेंगे, तुम कौन थे, किसके बच्चे थे। तो बाबा कहते याद करो, तो हम ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं, हम ऊंचे ते ऊंचे संगम युग पर स्वयं बाप से पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो वही मेरा टीचर है, वही मेरा सतगुरु है, और अभी सन्मुख मेरे बैठे हैं। मुझे अभी कुछ नहीं सोचना है कि मैं यहां देखूं कि वहां देखूं कि यहां देखूं, नहीं, बस मैं बाबा को देखूं। उस स्मृति से मैं बाबा को देखूं और उसी ही स्मृति से मैं सुनूं कि बाप दादा मुझे मिलने के लिए आए हैं। ये एक स्वयं को खुशी का नशा चढ़ाना होता है, तो ये हमें स्वयं को नशा चढ़ाने के लिए खुद खुद को स्मृति दिलानी है कि तू कितनी भाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, तू आज स्वयं प्रभु के सन्मुख मंगल मिलन मना रही हो। दुनिया में कितने करोड़ों मनुष्य आत्माएं हैं, ना वो प्रभु को जानते हैं ना वो प्रभु से मिले हैं, और मैं, अरे सन्मुख बाप बैठा है और मैं मिल रही हूं। तो ये स्मृति भी क्या करती है, हमारे अंदर वो अनुभव भर देती है, और वो अनुभव से हम जब बाबा की दृष्टि लेते हैं, मैं आपको मेरा अनुभव बताती हूँ। जब हम स्टेज पर आते हैं तो स्टेज पर बाबा से नंबर वार आप लोग भी आते हो, मिलते हो, तो जब बाबा से गुजरते हैं तो देखो कितनी, पहले तो एक तो मुरली सुनी उसकी खुशी, फिर जब स्टेज पर आने का चांस मिलता है और खुशी, फिर धीरे 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 हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे कदम बढ़ते हैं ऐसे अंदर में आत्मा की खुशी का पारा परसेंटेज में चढ़ता जाता है, रूहानी नशा चढ़ता जाता है। और फिर हम जब बाबा के समीप आते हैं तो दृष्टि कितनी मिलती है, कितना समय दृष्टि मिलती है, बहुत कम समय। लेकिन उसकी पूर्व तैयारी कितने समय से लेकर के हम करते आते हैं, और वो पूर्व तैयारी की मेहनत या कर्म या पुरुषार्थ का फल जब हम बराबर बाबा के सामने आते हैं और बाबा की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है तो उस समय कुछ भी याद आता है? कुछ याद नहीं आता, बस एक नजर पड़ जाए उसकी, क्योंकि उसकी दृष्टि वरदानी दृष्टि है, उसकी दृष्टि पावन दृष्टि है, उसकी दृष्टि में परिवर्तन करने का जादू है, उसकी दृष्टि में शक्तियों का स्रोत बहता है। उनकी दृष्टि की जितनी महिमा करें उतनी कम है। तो वो जो दृष्टि हमें मिलती है वो दृष्टि हम लेते हैं, और लेते लेते जब हम आगे बढ़ते हैं तो भले स्थूल नेत्र हमारे बाबा से अलग होके दूर जा रहे हैं, हम दूर जाते हैं, फिर भी पीछे मुड़ मुड़ के हम देखते हैं, परंतु जो अंदर का दिव्य नेत्र है ना, वो बाप दादा की दृष्टि को लेते हुए जाता है, साथ में लेकर के चलते हैं, और वो हमारे साथ अविनाशी रूप से रहता है। जितनी ऊंची स्थिति के साथ हम दृष्टि लेते हैं उतना वो मेरे पास अविनाशी रूप से रहता है। अब हम लोगों ने तो कभी दृष्टि ली हुई है, लेकिन आज तक वो दृष्टि भूलती नहीं, और वो दृष्टि की कमाल आज आप लोगों को अनुभव करनी है, और इसके लिए अंतर्मुखता और मौन अभी तक ना भी रखा हो तो अभी भी समय है। अभी भी मौन में रहेंगे, परंतु मौन के साथ साथ अंदर की स्थिति हम अपने बाबा से ही बातचीत करते रहें, बाबा को ही याद करें, जिसको देखें रूहानी नजरों से देखें, और किसी से हमारी आज बातचीत न हो, मनसा से भी हम किसी भी व्यक्ति से बातचीत न करें। हमें इतनी अंदर में अपनी स्थिति देही अभिमानी बनानी पड़े, और जब देही अभिमानी स्थिति बनती है ना, तो प्रभु के प्रति स्नेह जो है ना, वो अपने आप प्रकट होता है, ऑटोमेटिकली प्रकट होता है, क्योंकि देही आत्मा जो है वो उसकी संतान है, तो आत्मा उसकी संतान होने के कारण उसको अपने पिता की स्मृति से अंदर में प्यार जैसे उछलना शुरू हो जाता है। तो प्यार हमें खास प्रकट नहीं करना पड़ता, कईयों को प्यार करना भी सिखलाया जाता है, कईयों को प्यार करना भी नहीं आता। प्यार करना माना स्थूल देह से प्यार करना, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। वैसे तो प्यार कभी सीखा नहीं जाता है, कभी हम बच्चों को, कभी माँ बाप ने कहा कि जाओ स्कूल में जहाँ तुमको प्यार करना सिखलाया जाए, कि माँ से कैसे प्यार करो, पिता से कैसे प्यार करो, नहीं। बच्चा गोद में होता है, रोता है, माँ के हाथ में आता है, उसका स्पर्श क्या मिलता है, बच्चा शांत हो जाता है। तो हमें दृष्टि के द्वारा वो माँ का प्यार डायरेक्ट आत्मा को स्पर्श करता है, दृष्टि के द्वारा स्पर्श करता है, माना वाइब्रेशंस। हम वाइब्रेशन कैच करते हैं और बाबा हम बच्चों की तरफ वाइब्रेशन भेजता है। तो ये वाइब्रेशन कैच करने के लिए स्थिति बहुत आवश्यक है, हलचल की स्थिति न हो, अचल स्थिति हो, कोई भी प्रश्न उत्तर की स्थिति न हो, कोई भी अंदर में किसी व्यक्ति से, जैसे बाबा कहते हैं कि कैसे मुझे याद करो, देह सहित देह के सभी संबंधों को भुलाकर फिर मुझे याद करो। जब देह के संबंध भूल जाते हैं ना, तो फिर एक बाबा से हमारे सर्व संबंध जुटने शुरू हो जाते हैं। ऑटोमेटिकली दिल का हाल बाबा को देने को मन करता और हमारे कदम दिल वाला के, दिल जहां पर वो बैठा है बाबा का कमरा, हम वहां चले जाते हैं। कोई कहता है कहां जा रहे हो, बाबा के कमरे में। अरे इस वक्त कभी तो नहीं जाते हो, बस मन करा। तो ये कहां से अंदर में जागृत हुआ, ये हमारी अंदर की स्थिति ने हमें उस ओर खींचा। तो रूहानी स्नेह की डोर हमें खींचती है। आज हमें अपने रूहानी स्नेह की डोरी से बाबा को अपनी ओर खींच के बिठा देना है। और हम इसमें जितने सक्सेस होंगे, कंटिन्यूड, जैसे बाबा इधर बैठे हैं, मैं इधर बैठी हूं, आप बिल्कुल समीप, और बाप दादा की मुरली, आप ऐसे एकाग्र चित्त होकर के सुनेंगे, बस कहीं ध्यान नहीं जाएगा, सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे, आत्मा को अच्छा लगेगा। आत्मा को जैसे स्नेही कोई बोल बोलते हैं ना, तो वो सुनने बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, स्नेही सिर्फ ये कह दे आई लव यू, तो आत्मा कितनी खुश हो जाती है खाली इतने से शब्दों में। और मेरा प्रिय बाबा कितना प्यार करता है हम बच्चों को, कितने टाइटलों से नवाजता है, आने से ही हम बच्चों की महिमा करता है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम मेरे ये हो, तुम मेरे वो हो। तो खूब प्यार के सागर की, प्यार की लहरें प्रभु की भी उछलती है हमको देख करके। समुद्र में लहरें हमको देख के उठती हैं, उछलती हैं। अब हमारा काम है उन लहरों में लहराना और अपने को स्नान करना। तो इसीलिए आज का दिन खूब प्यार के सागर की लहरों में लहराना है। परंतु कैसे, जरिया क्या होगा, दृष्टि, सब दृष्टि का खेल, वह भी हमें दृष्टि से ये सब महसूस कराते और हम भी दृष्टि से महसूस करेंगे। इसके लिए हम इतना अपने को शांत अपने स्वधर्म में रखें तो शांति के सागर, प्यार के सागर, शक्ति के सागर, वो दिल वाला, उसकी जो दिल है, उसके दिल को खींच कर हम अपने दिल में ऐसा बिठा कर ले जाएंगे जैसे समाया हुआ रहेगा, कभी भूलेगा नहीं। अभी तो फरियाद है, बाबा हमें आपकी याद भूल जाती है। अरे बच्चा अपने माँ बाप को कभी भूलता है, नहीं भूलता। क्या सजनी कभी साजन को भूलती है? नहीं भूलती है। क्या कोई फास्ट फ्रेंड आपस में एक दो को भूलते हैं? नहीं भूलते। और हम बाबा को ही कहते हैं, बाबा हमें आपकी याद नहीं रहती है। कारण वो जो दिल का स्नेह है ना, नैनों में समाया नहीं उसको, नैनों के द्वारा दिल में समाया नहीं, उतारा नहीं, अंदर बिठाया नहीं। जो मेरा चेहरा बोले, मेरे नैन बोले, कितने अपने प्यारे प्यारे गीत हैं कि मेरे नैनों में बसता है दिल वाला, मेरे दिल में भी वो, मेरे नैनों में वो, मेरे कानों में भी वही शब्द गूंजते रहते। कभी कभी तो ऐसा लगता, मैं अपना अनुभव बताती हूँ, बाबा के प्यार को जब समा नहीं पाते ना, तो ऐसा लगता कहीं पागल नहीं हो जावे। कोई कोई मुरलियां बाबा की इतनी प्यार से, शक्तियों से भरी हुई, अपनेपन की फीलिंग्स कि वाकई हम 5000 वर्ष से बिछड़े हुए अब मिले हैं, तो ऐसा लगता कि हम मुरली हमको पागल कर देगी। तो इसलिए आज हमें प्रभु के प्रेम में पागल होने का दिन है। पागल होना मीन्स दिल की लगन उनके आगे प्रकट करना और उनकी दिल का अनुभव करना। हमारी और बाबा की दिल जैसे मिल गई, तो दिल वाला से ऐसी दृष्टि ले, बस उसमें खो जाए, बस आत्मा बस बार बार उसको देखकर यही कहती रहे, मेरा तो तू एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बस खूब प्यार को समा करके दृष्टि से वो सुख भर करके जाए। इसलिए कोई भी संकल्प की हलचल में नहीं आने का, भले हो भी बाद में, अभी तो मिलन मनाना है, अभी एक साइड पे रखें उसको। जहां दिल मिल जाते हैं ना, वहां क्या, क्यों, कैसे, कुछ नहीं होता। जब कहते हैं ना, दिल लगी गद्दी से तो परी क्या चीज है, ऐसे जब हमारी दिल बाबा से लग गई, तो बाबा के सामने बैठ के व्यर्थ संकल्पों की क्या मजाल है जो हमारे पास आए। तो आज जो प्राप्ति करनी है, जितनी भी प्राप्ति करनी है, हमें बहुत थोड़ा समय मिलता है, उस थोड़े से समय में बस दिल की मन की लगन से एकाग्र चित्त होकर दिल वाला को इतना प्यार से याद करते हुए देखते रहें और उनके मुख से निकलते हुए महावाक्यों को सुनते रहे और अंदर में समाते रहे। ओम शांति।